धवला पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर एक। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाऊणं, लोयालोयपयासं, गोदमथेरं पुनोजिनं धीरम्, णमिऊणखेत्तसुत्तं जहोवये संपयासेमो। आचार्य श्री भीमसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें अभी अपना प्रथम जीवस्थान ही चल रहा है और उसका विषय भी है खेतानुगम यानी क्षेत्रानुगम। पहले द्रव्य प्रमाणानुगम हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था? जीवस्थान ही चल रहे, सत प्ररूपणा चल रही, इन्हें है बस इतना बताया था, जीव समाज गुणस्थान वगैरह है की बात थी। उसके बाद उनका प्रमाण बताया, अभी उनका क्षेत्र बताएंगे। हाँ, जैसे अलग अलग जो मार्गण आए उनका क्षेत्र कितना ऑक्युपाय करते हैं, अभी जितनी जीवों की संख्या है, जैसे एकेंद्रीय पूरे लोक में है, इस तरह से उसको देखना है। पंचेंद्रिय लोक के असंख्यात भाग में है, वो स्पर्शन की बात अलग, क्षेत्र की बात अलग। ये हमने बहुत इसमें देखा था अलग अलग विषयों में, यहाँ तो डायरेक्ट क्षेत्र का ही विषय है। तो ये प्रथम जो जीवस्थान जो क्षेत्रानुगम है, उसमें जो चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या एक पर हम आ गए। अभी हमने जो मंगलाचरण यहाँ देखा है तो उसका अर्थ देखते हैं नीचे। केवल ज्ञान रूप सूर्य से लोक और अलोक के प्रकाशक, प्रकाशक यानी वो जानने वाले, लोक और अलोक के, अलोक में कोई प्रकाश जाता होगा वो बात नहीं, प्रकाश तो पुद्गल की पर्याय है ना। तो लोक और अलोक के प्रकाशक अर्थात सर्वज्ञ गौतम अर्थात उत्तम वाणी के स्थवीर, ऊपर था ना गोदम थेरम, देखो नीचे लिखा है, उसको दो आंकड़ा लिखा है, थेरो विहि विरिंचो, थेरो थेरो ब्रह्मा देव नमः स्थवीर धाता यानी विधाता, उसका अर्थ उन्होंने धाता विधाता किया। ऊपर भी लिखा है ना स्थवीर अर्थात विधाता यानी दिव्य ध्वनि के प्रणेता। गौतम नहीं है, गौतम है, वाणी को भी गो कहते हैं।
हाँ, गोदम लिखा है,
गोदम और यहाँ गौतम, हम तरतम भी कहते हैं ना, उत्कृष्ट गोयने वाणी, उत्कृष्ट वाणी के विधाता यानी दिव्य ध्वनि के प्रणेता। कर्ता भी शब्द नहीं डाला, प्रणेता शब्द डाला। ये गौतम ने ही लिखा है। हाँ, और उसका अगर अलग से कहना है तो उससे दूसरा अर्थ करेंगे गौतम कह के। हाँ, अभी तो तीर्थंकरों की बात है कि दिव्य ध्वनि के प्रणेता और जिन अर्थात वीतराग ऐसे, देखो ऊपर लिखा ना लोया लोय पयासम,
गौतम थेरम, थेरम
थवीर स्थवीर, उत्तम वाणी के स्थवीर यानी विधाता। देखो लोया लोय पयासम यानी लोकालोक के प्रकाशक, गोदम थेरम यानी गोतम, गो यानी वाणी, तम यानी उत्तम वाणी के, थेरम यानी स्थवीर यानी विधाता यानी दिव्य ध्वनि के प्रणेता। ऊपर क्या लिखा है, पुनो जिनम वीरम, जिन जिन्होंने वितराग ऐसे त्रिविध विशेषण विशिष्ट तीन विशेषण बताए। लोकालोक प्रकाशक यानी सर्वज्ञ है, दिव्य ध्वनि के प्रणेता है और वितराग है। हम कहते हैं वितराग, सर्वज्ञ और हितोपदेश। ऐसे श्री वीर भगवान को, वीरम यानी महावीर भगवान की बात है यहाँ पर, अथवा यह श्री वीर कहने को कोई भी तीर्थंकर भी हो सकता, द्वादशांग ग्रंथ रचना से प्रकाशित किया है लोक और अलोक को जिन्होंने। अब गौतम की बात करेंगे, उन्होंने द्वादशांग की रचना करके लोकालोक का प्रकाशक किया, प्रकाशन किया, तथा जिन अर्थात काम क्रोधादि भाव शत्रुओं के जीतने वाले, और वीर अर्थात विशेषण रूप, विशेष रूप से जो प्राणियों को मोक्ष के लिए प्रेरणा दे करते हैं या मोक्ष मार्ग की ओर चलाते हैं, वीर ऐसे गौतम स्थवीर। अब यहाँ गौतम शब्द किया, श्री इंद्रभूति गणधर को नमस्कार करके दो प्रकार से अर्थ किया ना, पहले सर्वज्ञ वितराग और हितोपदेशी दिव्य ध्वनि के प्रणेता ऐसा अर्थ लिया, उन्हीं शब्दों में से गणधर को नमस्कार करके क्षेत्र सूत्र को, क्षेत्र सूक्तम यानी यहाँ तो अपना द्रव्य क्षेत्र प्रमाणानुगम है, क्षेत्र सूत्र को अर्थात क्षेत्रानुयोग द्वार संबंधी सूत्रों के अर्थ को जैसा उपदेश अर्थ रूप से दिव्य ध्वनि के द्वारा श्री वीर भगवान ने दिया, जहो वयसम यानी यथा उपदेश यानी जैसा उन्होंने दिया और ग्रंथ रूप से श्री गौतम गणधर ने दिया, उसी के अनुसार हम भी प्रकाशित करते हैं। वीरसेन स्वामी लिखते हैं, कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्ञाता हूँ और मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ, कोई भी आचार्य हो, ये मूल जिनेन्द्र भगवान की जो परंपरा है उसकी बात ही उठाते। कुमकुंद आचार्य भी कितनी बार कहते एवं जिनेन्द्र भणिता ऐसा, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा, बार बार कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि कोई अपने मन कल्पना से कोई बात, कोई जैसे कहीं कोई बातें बना दे तो ये बातें सही नहीं हो सकती। जिसकी सर्वज्ञ से परंपरा जुड़ी हुई है वही बात सर्व ठीक हो सकती है। यानी अभी हमें किसी विशिष्ट व्यक्ति से भले मार्ग मिला हो परंतु वो मार्ग उनका नहीं है, पूर्वाचार्यों ने बताया हुआ। लोग पूछते हैं तुम कांजी स्वामी है कि तो श्रीमद में, श्रीमद और कांजी स्वामी ने कोई धर्म उत्पन्न नहीं किया, अगर ऐसा मानेंगे तो वो तो छद्मस्थों ने उत्पन्न किया हुआ ऐसा कोई तो असत्य होगा। उन्होंने जो परंपरा चली आई थी उसका प्रसारण किया, उद्घाटन किया, को उसको अर्थ खोल कर बताया और सरल करके समझाया। उन्होंने तो कुनकुंदाचार्य के द्वारा जो माल मिला था वो बताया, कुनकुंदाचार्य ने तो आगम परंपरा जो गंधर से चली आई थी उसकी बात खोली।
देखो यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ किए हैं। वीरम का अर्थ जिनेन्द्र भगवान भी होता है और उन्होंने वीरसेन स्वयं का भी नाम उसमें ऐड किया। हम भी यानी वीरसेन भी प्रकाशित करते हैं। यहाँ तो ये बात है कि हम किसी व्यक्ति विशेष से जिन्हें जैन दर्शन की विशेषता कहना चाहेंगे तो गलत है, क्योंकि जो जिनेन्द्र भगवान की बात है वही असल है। अब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वैसे यहाँ पर भले हम किसी व्यक्ति के महात्म्य से उनकी महिमा गाएं लेकिन उनसे धर्म शुरू हुआ है ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, और ऐसा अगर जो कोई करता है तो वो गृहित मिथ्यात्मी है। ये आपने नहीं बताया गृहित मिथ्यात्मी।
या वीरम का अर्थ वीरसेन स्वामी नहीं ले सकते हैं।
या वीरसेन भी प्रकाशित करते हैं,
करते हैं, उसी के अनुसार हम प्रकाशित, हम यानी वीरसेन, परंतु जिनम और वीरम को हम नमस्कार करके हम प्रकाशित करते हैं, तो वीरम का अर्थ वीरसेन नहीं ले सकते। किसको नमस्कार किया है? देखो एक द्वितीय विभक्ति है, लोकालोक प्रकाशम, माइक तो चालू है। लोकालोक प्रकाशक ऐसे सर्वज्ञ है, दिव्य ध्वनि के प्रणेता है और भगवान है, उनको नमस्कार करके नमीऊन एक बात, या लोकालोक को जिन्होंने वो द्वादशांग के द्वारा प्रकाशित किया है और जो जिन्होंने राग द्वेष वितरागी है, जैसे राग द्वेष से भी रहित है और वीर ने लोगों को मोक्ष मार्ग की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे गणधर्व को नमस्कार करके वीरम, ये द्वितीय है तो वीर में से वो वीर से अर्थ नहीं निकल सकता।
अच्छा,
हाँ, उनको नमस्कार करने वाले वो वीरसेन है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा इसके अंदर। अभी आगे बढ़ेंगे, दो नंबर के पृष्ठ पर आते हैं, यहाँ से सूत्र शुरुआत है। ये सूत्र जो मूल रचना है गणधरों से, जो परंपरा रूप से चली आई थी, वो सूत्र की बात है, आगम है ये। अभी ये क्षेत्र संबंधी यहाँ सब प्ररूपणा चलेगी। क्षेत्रानुगमेन दुवेहो निर्देशो ओघेन आदेशेन य। ओघ का अर्थ क्या समझते हो? सामान्य से यानी गुण स्थानों और आदेश से यानी मार्गनाम विशेष। इसके लिए और कौन से शब्द है? गुणस्थान एक हुआ और ओघ एक हुआ, सामान्य है ना, और ये विशेष के लिए विशेष कहो, मार्गणा कहो, आदेश कहो, उसको विस्तार कहते, विस्तार भी कहते हैं और ओग को संक्षेप भी कहते हैं। इसे अलग अलग नाम उसी के लिए आते हैं। इसका अर्थ देखते हैं। क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। निर्देश यानी वो अलग कथन होगा, जो निरूपण, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। शंका, यहाँ क्षेत्रानुयोग द्वार के अवतार का क्या फल है? अवतार ने अभी वो तो बताया है, उत्पन्न हुआ है, उसका क्या फल है? समाधान, उक्त शंका का उत्तर देते हैं, वही इस प्रकार है। सत प्ररूपणा नाम के अनुयोग द्वार से जिनका अस्तित्व जान लिया है, पहले में पहले सत प्ररूपणा यानी सत यानी बताते हैं, तो उसके अस्तित्व है ये सिद्ध हुआ। तो कहते कि सत प्ररूपणा नाम के अनुयोग द्वार से जिनका अस्तित्व जान लिया, वो पहली दूसरी पुस्तक में हमने जान लिया, तथा द्रव्यानुयोग द्वार में जिनका संख्या रूप प्रमाण जान लिया, वो है और कितने हैं ये हमने जान लिया। तो कितने हैं जान लेने के बाद वो कितना क्षेत्र व्याप्त है हमको अंदाजा आ सकता है, बिना संख्या के उसका भी अंदाजा नहीं ले सकते। केवल है कहने से वो कितने बड़ा है, कितने क्षेत्र में रहते हैं, वो कुछ नहीं पता था, संख्या भी मालूम हो गई। अब कहते ऐसे 14 जीव समासों के, यहाँ जीव समास शब्द गुणस्थान के लिए आया है, यानी 14 गुणस्थानों के क्षेत्र संबंधी प्रमाण का जानना ही क्षेत्रानुयोग के अवतार का फल है। अवतार ने वो यहाँ क्यों लिया, अभी उसकी बात ये क्यों उत्पन्न हुआ, अवतार हुआ हमें वो जन्म लेता वो बात नहीं है, यानी अभी ये गुणस्थानों का क्षेत्र, यानी गुणस्थानों में जो जीव, पहले गुणस्थान में जीव है तो पूरे लोक में है, चौथे गुणस्थान वाले जीव कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, चारों गति में है, फिर भी वो संगी पंचेंद्रिय होते, उसमें से कुछ होते लोक का संख्या का, वो तो बताएंगे अभी, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, क्यों बताना उसकी चर्चा यहाँ चल रही। तो क्षेत्र संबंधी प्रमाण का जानना होता है किस, ये द्वार जो है क्षेत्र अनुयोग द्वार, अथवा असंख्यात प्रदेश वाले लोकाकाश में अनंत प्रमाण वाली जीव राशि क्या समाती है या नहीं समाती, क्योंकि जीव तो अनंत है और एक एक जीव असंख्यात प्रदेश है, कितना जितना लोक है उतना ही, यानी एक जीव लोक के बराबर है, इतने प्रदेश वाला है और ऐसे जीव अनंत है, तो क्या वो एक लोक में समा सकते हैं, ये प्रश्न है। इस प्रकार के संदेह से घुलने वाले शिष्य के संदेह होता है तो आगे कुछ नहीं सोचता है। संदेह के विनाश करने के लिए क्षेत्रानुयोग द्वार का अवतार हुआ है। इस क्षेत्रानुयोग द्वार के प्रारंभ में क्षेत्र का निक्षेप करना चाहिए। निक्षेप याद है आपको?
किसी को नाम,
हाँ, नाम रखना, फिर वो तो स्थापना करना, तो नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये तो चार होते हैं, या नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये छह प्रकार के निक्षेप हो सकते हैं। निक्षेप गेय वस्तु में रखे जाते हैं, जिसका हमें विवरण करना है, हमें क्षेत्र की बात है तो उसका नाम रखेंगे क्षेत्र, उसको क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि किसी वस्तु का हमको जानना है, उसको विशेष वर्णन करना है, तो उसको नाम लेकर बताएंगे ना, नहीं तो किसकी बात चल रही है तो पता नहीं चलेगा। तो इसे निक्षेप करना चाहिए। शंकाकार पूछते निक्षेप किसे कहते हैं, तो कहते हैं संशय विपर्य और अनध्यवसाय में अवस्थित वस्तु को। वस्तु में कुछ नहीं, हमारे ज्ञान में ये दोष लगते हैं। किसी वस्तु के बारे में हमें अगर संशय है, विपर्य ने विपरीत बना है, अनध्यवसाय ने कुछ समझ नहीं, डबल नहीं, वो भी नहीं, कंफ्यूजन है, कुछ है, इतना ही बात है, क्या है पता नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ तो है, बस इतना है, इतना ज्ञान हुआ अपन, क्या है उसके बारे में कुछ निर्णय नहीं हुआ। इन्हें अनिर्णित जो है, ऐसे वस्तु को उनसे निकाल कर, यानी वो संशय आदि मिटाकर, जो निश्चय में क्षेपण करता है, ये वस्तु को ही डालता है, वो निश्चित रूप से डालता है, वस्तु में ये क्षेपण होते हैं। फिर से पढ़ते हैं, संशय विपर्य और अनध्यवसाय में अवस्थित वस्तु को उनसे निकाल कर, यानी संशय आदि से निकाल कर, जो निश्चय में क्षेपण करता है उसे निक्षेप कहते हैं। अथवा बाहरी पदार्थ के, पदार्थ में ये डाले जाते हैं, निक्षेप करने नहीं डालना, पदार्थ के बारे
में
वो ज्ञान में है, पदार्थ के बारे में हमारा संशय है, कंफ्यूजन है, विपरीत पना है, अभी हमें वो वस्तु सही जानने के लिए ये निक्षेप वस्तु में डाले जाते हैं। तो अथवा बाहरी पदार्थ के विकल्प को निक्षेप कहते हैं, ये अलग अलग पद्धति से उसकी परिभाषाएं बता रहे हैं। अथवा अप्रकृत का निराकरण करके, प्रकृत का प्ररूपण करने वाला निक्षेप है, यानी वस्तु के विषय में अनेक बातें हो सकती है, तो उसमें हमारी जो जिस संबंधी हम बोलना चाहते हैं, प्रकृति यानी वो जो हमारा विवक्षा जो है, अन्य वस्तु के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, पर्टिकुलर वस्तु के बारे में कहेंगे, उससे भी पर्टिकुलर बात कहेंगे, इसको कहेंगे प्रकृत। अप्रकृत का निराकरण करके, जैसे हमने देखा ना अभी, हम जो द्रव्य प्रमाणानुगम कहते थे उसमें कहते असंख्यात, असंख्यात कहने से अनंत का निराकरण हुआ, संख्यात का निराकरण, यानी उसको रूल आउट किया, ये अप्रकृत को निराकरण करेंगे, उसको रूल आउट करेंगे और प्रकृत विषय के बारे में बताएंगे। तो अप्रकृत का,
यहाँ पर अप्रकृत का अर्थ अविवक्षित,
अविवक्षित
जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे हैं वो अप्रकृत, और प्रकृत यानी जिसके बारे में हम कह रहे हैं उसको कहेंगे कि भाई विवक्षित,
यानी जिस बारे में हम कहना चाहते हैं वो प्रकृत हो,
यथार्थ जिसको हम कहेंगे कंसिडरेबल।
देखो अप्रकृत का निराकरण करके प्रकृत का प्ररूपण करने वाला निक्षेप है, उसके लिए गाथा भी उन्होंने ऊपर बताई है। देखो एक नंबर की, अपगयन निवारण पयदस्य परुवणानि मित्तं च संशय विनाशन तच्चत्थवधारणम च। यही गाथा धवला एक में भी आई है 15 नंबर की। यहाँ अपगय लिखा है, वहाँ अवगय लिखा था। देखो यहाँ क्या लिखते हैं, अपगय ने अप्रकृत, अपगय निवारणम यानी अप्रकृत का निवारण के लिए, पयदस्य परुवणानि मित्तं और प्रकृत का प्ररूपण करने के लिए, संशय विनाशनम संशय का विनाश करने के लिए, तच्चत्थ अवधारण अर्थम च और तत्वार्थ का उदाहरण करने के लिए। अभी हम नीचे का अर्थ देखते हैं विस्तार से। देखो हिंदी में पढ़ेंगे, अप्रकृत के निवारण के लिए, अप्रकृत विषय के निवारण के लिए कहेंगे हम, समझने के लिए। और प्रकृत विषय के प्ररूपण करने के लिए। ये संशय विनाशन अष्टम का अर्थ नहीं लिखा है नीचे, हमने उसमें डाला था लास्ट टाइम, संशय का विनाश करने के लिए और तत्वार्थ के अवधारण करना, अवधारण करना है ने उसको जानना, निक्षेप किया जाता है, निक्षेप वस्तु में किया जाता है। अप्रकृत का अर्थ होता है अयथार्थ और प्रकृत का अर्थ है यथार्थ। दूसरा अर्थ है विवक्षित यानी अंडर कंसिडरेशन, जिसकी बात हम कहना चाहते हैं उसको कहेंगे। धवला में उसके निक्षेप का ऐसा भी परिभाषा बताई थी, अनिर्णित वस्तु का उसके नामादिक द्वारा निर्णय कराता है। नामादिक है नाम स्थापना द्रव्य भाव वगैरह, वस्तु संबंधी वो निर्णय हमें होता है किसके द्वारा, निक्षेपों के द्वारा। निक्षेप वस्तु में किया जाता है और निक्षेपों के द्वारा वस्तु का जो हमें निर्णय नहीं था वो निर्णय हो जाता है। या ऐसा भी उसमें लिखा था कि नामादिक के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को भी निक्षेप कहते हैं। ये निक्षेपों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। वह निक्षेप पहले बताया था ना कि क्षेत्रानुयोग में क्षेत्र का निक्षेप करना चाहिए। अब ये जो निक्षेप है तो यहां पर चार प्रकार का बताएंगे कि नाम क्षेत्र, क्योंकि क्षेत्र में निक्षेप करना है ना, तो नाम क्षेत्र, स्थापना क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र और भाव क्षेत्र के भेद से चार प्रकार का है। स्थापना क्षेत्र में हम क्या, नहीं हमारा लोक है, हमें इसमें लोक की स्थापना कर दी, या जो हम संदृष्टि बनाते तीन आड़ी लाइन, अरे ये लोक है, लोक प्रमाण, वहाँ तो संख्या क्या हमने स्थापना की, हमारा पृथ्वी का, ये हमारी पृथ्वी है, स्थापना ही है ना, वो तो चार्ज बनाते वो क्या है, हमारी स्थापना है। वो पूरा लोक तो इतना लंबा चौड़ा है और हमने उसके चित्र बनाए, जैन भूगोल पुस्तक में हमने चार्ज बनाए, वो क्या है, वो स्थापना ही तो है।
जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके पहले मॉडल बनाते हैं,
नक्शा बनाते हैं,
हो गया ना,
मॉडल बनाते
हैं, नक्शा करो, वो भी स्थापना हो गया। तो ताजमहल पहले कब बना
और उसके दिमाग में बना,
जो आर्किटेक्ट होगा उसके दिमाग में पहले बना, बाद में कंसिडर।
और ये जरूरी कि उसी शेप का भी हो, चित्र तो हम उसके शेप के बनाने की जरूरत, तो हमने कहा ये तो हमारा है, जैसे वो तो भगवान को भी कोई भी पत्थर लिया उसके ऊपर सिंदूर डाला, ये हमारा मारुति है, क्या कहते हैं उसको, ये हमारा भगवान है, कुछ भी कर देते हैं ना। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं,
द्रव्य क्षेत्र,
यहाँ पर नाम क्षेत्र, स्थापना क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र और भाव क्षेत्र के भेद से चार प्रकार का ये निक्षेप जो है, शंका, निक्षेप चार प्रकार का कैसे है, उसका समाधान, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नये के आश्रय करने वाले वचनों के व्यापार की अपेक्षा से, यानी वो वचन जिसमें लागू होते हैं, नयों के द्वारा हम वस्तु को जानते हैं, तो वो नयों का जो विषय होगा, निक्षेप चार प्रकार का होता है, कहा भी है, ये कहा भी है ऊपर, फिर गाता है दो नंबर के, नामं श्रवणादवियं तियेसदवट्टियस्य निक्षेवो भावोदिपज्जवटिय परुणा एष परमत्थो। नाम, स्थापना और द्रव्य, यानी नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप और द्रव्य निक्षेप, ये तीन निक्षेप द्रव्यार्थिक नय की प्ररूपणा के विषय है। क्योंकि द्रव्य का हमने नाम रखा, किसी अन्य द्रव्य में किसी अन्य द्रव्य को हमने मान लिया, कल्पना की, वो स्थापना हुई। और तीसरा जो द्रव्य निक्षेप है ना, द्रव्य को तो वही की वही है, और उसके पूर्व और भूत पर्याय का वर्तमान में उपचार करना, यानी उसमें भी द्रव्य का ही उपचार होता है, द्रव्य तो वही है, इसलिए वो सारे द्रव्यार्थिक नय के विषय है। और भाव निक्षेप पर्यायार्थिक नय की प्ररूपणा का विषय है, भाव निक्षेप यानी वर्तमान में जो उसकी अवस्था है उसको लेते हैं, वर्तमान में जो जिस रूप परिणाम है उसको भाव निक्षेप में लेते हैं, इसलिए पर्यायार्थिक नय का विषय हो जाता है। हाँ संन्यास है, वही वो निक्षेप है उसके। वो तत्वार सूत्र में जो है ना, पहले 5-7 सूत्र, वो सभी बातें अभी धवला पुस्तक में भी हुई थी, यहाँ पर भी वही बात है। देखो ये निमित्त भी, निमित्तों की अपेक्षा भी नाम रखते हैं, ये हमने पहले भी देखा था धवला में, वो नाम रखने के भी प्रकार देखे थे। कोई उसका गुण देखकर भी होता है, कोई जो काम करता है, जैसे ये गायक है, नर्तक है, ये चित्रकार है, ऐसे भी नाम रखते हैं। कहीं कहीं बिना किसी अपेक्षा से भी नाम रखते हैं, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ तो निमित्त नीचे कुछ आया क्या? मैंने यहाँ जो लिख के रखा था उसकी मैं बात बताती हूँ। इन निमित्तों की अपेक्षा से भी हम नाम रख सकते हैं, ये नीचे है उसकी बात है, अभी मैं पढ़ती हूँ, पहले वाक्य पढ़ती हूँ फिर मैं ऊपर की बात बताऊंगी आपको। अभी हमने 2 नंबर की गाथा का विषय, ये अर्थ देखा, यही परमार्थ सत्य ये भी देखा। अब जीव अजीव और उभय रूप, यानी जीव और अजीव मिलकर उभय रूप, कारणों की अपेक्षा से रहित, या अन्य कारणों की अपेक्षा से रहित ऐसा भी आना चाहिए, होकर अपने आप में प्रवृत्त हुआ क्षेत्र, यह शब्द नाम क्षेत्र निक्षेप है। देखो क्षेत्र ये कहना है, ये नाम क्षेत्र निक्षेप हुआ, ये हमने कहा ना ये क्षेत्र है, तो क्षेत्र ऐसा उसमें शब्द बना, ये तो नाम रखा हमने, वो नाम निक्षेप हुआ। तो ये कैसे कारणों की अपेक्षा से रहित, जो नाम रखा जाता है उसमें कोई कारण होना ही चाहिए ये बात नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो क्या अपेक्षा से भी कोई नाम रखे जाते हैं? तो कहते हाँ, निमित्तों की अपेक्षा से भी नाम रखे जाते हैं। वो निमित्त भी उसमें हमने 4 प्रकार के देखे थे, जाति द्रव्य गुण और क्रिया में, ये पहले नंबर के पुस्तक में से आपको बता रही जो मैंने यहाँ लिख के रखे। जाति में वो कहते ना, ये गाय है, ये घट है, ये पट है वगैरह, उसकी जाति है। उसमें आगे भी जो कुछ बताए होंगे, द्रव्य में संयोग द्रव्य है, संयोग द्रव्य में वो जो लकड़ी वाला है, चश्मे वाला है, वो क्या है, उसके साथ जो द्रव्य, उसकी अपेक्षा से नाम दिया जाता है। और समवाय द्रव्य भी हो सकता है, यानी उसी के अंग कुछ, जैसे कोई काना है, अंधा है या कुबड़ा है, तो उसकी के अंग जो है उसके अनुसार उसका नाम दिया जाता है। गुण में कोई काला है, ये काला आदमी है, ऐसा कहेंगे ना, वो क्या है, गुण की अपेक्षा। क्रिया में क्रिया की अपेक्षा नाम रखे जाते हैं, नर्तक है, गायक है, चित्रकार है, इस तरह से। अभी जो हमने जाति की बात देखी थी ना, जाति में 2 प्रकार आते हैं, एक होता है तद्भव सामान्य और एक सादृश्य सामान्य। अभी सुन लो, ये पहले हमने सारे देखे है धवला में, पहले पुस्तक में, तो तद्भव सामान्य का ही अर्थ होता है उद्भवता सामान्य, यानी किसी एक द्रव्य की त्रिकाल गोचर पर्याय जो होती है उसमें जो कंटिन्यूटी वही का वही रहा है उसको अन्वय कहते हैं, कंटिन्यूटी। यानी मनुष्य है, उसकी अनेक अवस्था है ना, बालक है, युवा है, वृद्ध है, फिर भी सबको हम मनुष्य कहेंगे, हम उसी का नाम लेकर हम बुलाएंगे। या सादृश्य यानी तिर्यक सामान्य, उसको कैसे एक ही समय में अनेक व्यक्तियों में, अनेक जीवों में सदृश सिमिलर परिणाम को सादृश्य सामान्य कहते हैं। जैसे रंग और आकार अलग अलग होने पर भी सबको हमने गाय कह दिया, गायपना सब में सामान्य है, और उसमें उनकी विशेषता अलग, कोई काली गाय, कोई धौली है, कोई पीली रंग की है, कोई सादृश्य सामान्य, कोई समानता है, जाति की समानता है। गौ ये जाति समान है, उसमें भिन्नता अलग अलग है, वो बात अलग। तो सबका नाम है गाय, यानी जाति विशेष का नाम हमने गाय कह दिया। ये नाम रखने के अलग अलग प्रकार बताए, हमें इतने विस्तार में भी यहाँ नहीं जाना। यहाँ क्या कहते, देखो पहले मैंने क्या कहा, किसी भी कारण की अपेक्षा से रहित ऐसा वस्तु का नाम रख दिया तो यह है, हमने अभी अपना विषय क्या है, क्षेत्र। तो क्षेत्र कहाँ, ये हमने क्षेत्र नाम बताया, ये नाम क्षेत्र निक्षेप, वह नाम निक्षेप वचन और वाचक के नित्य अध्यवसाय अर्थात वाच्यवाचक संबंध के सार्वकालिक निश्चय के बिना नहीं होता। जब हमने वो नाम रख दिया तो हमेशा ही क्षेत्र शब्द से उसी को हम सूचित करते हैं। वाच्य ने जिसको हम बताते वो है वाच्य, ये मैंने इसको पेंसिल कहा, ये मेरे हाथ में जो ये चीज है ये है वाच्य, और उसको बताने वाला शब्द जो है वो वचन। जब हमने उसका नाम पेंसिल रखा, पेंसिल वचन से ये पेंसिल नामक वस्तु बताई जाती है, ये वस्तु है वाच्य, और उसका नाम लेकर हम उसको कहते वो है वाचक। या तक हाँ चेंबूर कह दिया, तो जो जगह है वो एरिया है उसको चेंबूर नाम दिया, तो जो एरिया है वो हुई वाच्य, और हमने चेंबूर कह दिया वो हुआ उसका वाचक। नहीं वो ज्ञायक, वाचक यानी वचन से बताने वाला, वाचक यानी शब्द होता है, जो कोई भी शब्द। हमने ये घर का नाम रख दिया निर्मला निवास, वाचक हुआ, और ये जो बिल्डिंग है वो क्या है, वाच्य हुआ। देखो अभी इसका अर्थ देखते हैं। ये जो नाम निक्षेप है, ने हमने नाम बताया, किसी चीज का नाम रखा, वचन और वाचक है, वचन यानी वो वाचक तो है बता शब्द, वचन यानी शब्द और वाच्य यानी वो वस्तु, नित्य अध्यवसाय अर्थात वाच्य वाचक संबंध के सार्वकालिक निश्चय के बिना नहीं होता। अध्यवसाय यानी वो यही है, यानी उस वचन से वही चीज बताई जाती, उसको कहेंगे नित्य अध्यवसाय, सही ज्ञान, उसका सही ज्ञान होता है, उस वचन के द्वारा उसी वस्तु का सही ज्ञान हो जाता है। इसलिए अथवा तद्भव सामान्य निबंधनक और सादृश्य सामान्य निमित्तक होता है। ये नाम जो होता है, एक तो वचन और उसके द्वारा बताई जाए वस्तु, ये हमेशा उनका संबंध रहता है, तभी तो उसका नाम रखते हैं। अथवा अभी मैंने जो बताया तद्भव सामान्य निबंधनक, तद्भव सामान्य का अर्थ क्या देखा था हमने, किसी एक द्रव्य की त्रिकाल गोचर पर्याय में वही वस्तु की पाई जाती है, उसको तद्भव सामान्य कहा, जिसको ऊर्ध्वता सामान्य भी कहते हैं। और सादृश्य सामान्य अनेक वस्तुओं में उसकी जाति समान है, उसको एक नाम से उसको पुकारते हैं। एक ही वस्तु को अनेक पर्याय में उसी नाम से पुकारते हैं, या अनेक अलग अलग वस्तुओं में सदृशता की अपेक्षा सबको एक नाम देते, ये उसका अर्थ है। ये क्या है, नाम निक्षेप जो होता है वो इस तरह से होता है, तद्भव सामान्य का बताने वाला भी हो सकता है या सदृशता बताने वाला भी हो सकता है। इसलिए अथवा तीसरा पॉइंट, वाच्य वाचक रूप दो शक्तियों वाला एक शब्द पर्यायार्थिक नय में असंभव है, इसलिए द्रव्यार्थिक नय का विषय है, ऐसा कहा जाता है। नाम निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का विषय क्यों है, उसकी चर्चा है। ये अभी यहाँ जाके वाक्य पूरा हुआ, नाम निक्षेप को द्रव्यार्थ, क्योंकि पहले तीन निक्षेप द्रव्यार्थिक नय के विषय बताए, तो नाम निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का विषय क्यों है वो द्रव्य को बताता है। पहले मैं पहले बताया कि वाच्य और वाचक इनका कायम संबंध बताता है, यानी वो पदार्थ पूरा ही बताया जाता है उस नाम के द्वारा। एक बात हो सकता है, एक ही पदार्थ में अनेक पर्यायों को वो सूचित करता है, या अनेक भिन्न भिन्न द्रव्यों में उनकी सिमिलैरिटी बताने वाला वो नाम होता है, इसलिए भी वो द्रव्यार्थिक ने का विषय है। तीसरी बात क्या है, वाच और वाचक ये दो शक्तियों वाला एक शब्द पर्यार्थिक ने में संभव नहीं। अगर भेद करेंगे तो वाच जो है वो तो वस्तु वो अलग है, वाचक तो शब्द है वो अलग है, वो शब्द है भाषा वर्गना से बना और ये कुछ अन्य चीज है, तो पर्यार्थिक ने से उसमें भेद है, वो एक ही चीज दोनों नहीं हो सकती, इसलिए ये द्रव्यार्थिक ने का विषय है। बस इतना ही कहना है, नाम निक्षेप ये द्रव्यार्थिक ने वाला उसका विषय है। अभी विशेषार्थ इसी पूरे पैराग्राफ का विशेषार्थ देख रहे हैं। यहाँ पर नाम निक्षेप को पर्यार्थिक ने का विषय बतलाने के यहाँ पर नाम निक्षेप को द्रव्यार्थिक ने का विषय बतलाने के लिए तीन हेतु दिए हैं, जिनका अभिप्राय क्रमशः इस प्रकार है। नाम निक्षेप वचन और वाच्य के नित्य अध्यवसाय के बिना नहीं होता। देखो अनध्यवसाय होता है वो तो कंफ्यूजन होता है, कुछ ज्ञान नहीं, अध्यवसाय में निश्चित ज्ञान हो जाता है। पेज नंबर 3 पर आए हम, नीचे का विशेषात पढ़ रहे हैं। देखते वचन और वाच्य के नित्य अध्यवसाय के बिना नहीं, इसलिए वह द्रव्यार्थिक नय का विषय है, अर्थात इसी को समझा रहे हैं। इस शब्द से यह पदार्थ जानना चाहिए, अभी हमने देखा ना चेंबूर कहने से उस एरिया को जानना चाहिए, वो शब्द जो है वो उसी पदार्थ को बताने वाला होता है। इस प्रकार का संकेत किए जाने से शब्द अपने वाच्य का वाच्यक होता है। ख्याल में आई बात, पेंसिल ऐसा शब्द, इस जो पेंसिल जिसको हम जिस वस्तु को हमने पेंसिल कह दिया उसका वाचक है, और वो नित्य नहीं, तो कभी हम इसको पेंसिल कहेंगे और कभी एक क्लिप है उसको, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा इसी के लिए हमने वो शब्द नियुक्त किया है, वो शब्द उसी चीज को बताने वाला है। पेज नंबर 3 नीचे का पैराग्राफ, नाम निक्षेप ये द्रव्यार्थिक ने का विषय क्यों है, इसको चल रहा है कि जो शब्द होता है वो उसी चीज को बताने वाला होता है, उसका नित्य संबंध बताया जाता है। देखो नीचे से 5वीं लाइन, यदि यह संकेत या वाच्य वाचक का संबंध नित्य न माना जाए तो भिन्न देश या भिन्न काल में उस शब्द से उसके वाच्य रूप अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। यानी जो हम आत्मा शब्द है, जीव शब्द है, वो हम अपने लिए जीव के लिए यूज करते हैं, अब कालांतर से वो अजीव के लिए होगा तो क्या होगा, वो हमारे शास्त्र सब गड़बड़ हो जाएगी, हम उसका सही अर्थ नहीं समझते, यानी हमेशा उसी चीज के लिए वो शब्द नियुक्त तो होता। किंतु देवदत्त आदि जो नाम किसी व्यक्ति के बाल्यावस्था में रखे गए थे, वह आज वृद्धावस्था में समान रूप से उस व्यक्ति के वाचक देखे जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वचन और वाच्य के मध्य में जो संबंध है वह नित्य है, क्योंकि वही बालक था, वही बड़ा हो गया, वही बुढ़ा हो गया, नाम तो वही का वही रहा, है ना?
नहीं, ये तो देवदत्त तो बहुत पुराना नाम हो गया।
हाँ, देवदत्त नाम।
हाँ, अभी दिलीप कुमार, वो छोटा था तो कुमार था, अभी बुढ़े में भी वो कुमार ही है, नित्य।
इससे सिद्ध होता है कि वचन और वाच्य के मध्य में जो संबंध है वह नित्य है, और नित्यता का द्रव्य के अतिरिक्त अन्यत्र पाया जाना असंभव है। नित्यता तो द्रव्य को सूचित करती है, नहीं तो पर्याय की वो तो होंगे ना, वो बालक देवदत्त, बड़ा युवा देवदत्त, ऐसा कहना पड़ेगा फिर उसको। इससे सिद्ध होता है कि नाम निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का विषय है, ये एक हेतु दिया। दूसरा हेतु बता रहे हैं अभी, सेकंड, नाम निक्षेप को तद्भव सामान्य और सादृश्य सामान्य निमित्तक कहा जाता है, यानी उसके कारण वो नाम पड़ा, निमित्तक यानी उसके निमित्त से। उसका अभिप्राय यह है कि विवक्षित सुवर्णादि वस्तु के पूर्वापर, पूर्वापर ने पूर्व और अपर ने बाद में होने वाली पर्याय, पूर्वा पर काल भावी, यानी पूर्व काल में और बाद में पश्चात वाले काल में, भूत भविष्य काल में होने वाली कटक केयूरादि पर्यायों में, यानी सोने के जो कोई गहने होते हैं अलग अलग होते हैं उसकी पर्यायों में, पहले हमारे पास बंगड़ी थी, फिर उसके हार बनाया, फिर उसका कुछ बाजू बंद बनाया, ये सोना कब से है? अरे हमारी 10 पीढ़ी से है। तो सोना वही का हुई है, और पूर्वापर अवस्था में, पूर्वापर कालभावी कटक केयूरादि पर्यायों में पर्यायकृत विभिन्नता रहते हुए भी वो अलंकार अलग अलग डिजाइन के बनाए उसी सोने में से, फिर उसको मिटाया और कुछ नया बनाया, तो पर्याय भिन्न भिन्न होने पर भी उनमें एक ही सुवर्ण समान रूप से सदा विद्यमान रहता है। सोना तो वही का वही है, इसलिए इस प्रकार की समानता को तद्भव सामान्य कहते हैं। उसका नाम हमने सोना रखा है, उसका नाम बंगड़ी नहीं कहा हम, वो सोना, ये सोना हमारे घर में 10 पीढ़ी से ये कह रहे हैं ना, उसका नाम जो सोना है वो उसमें वो सारे अन्य अन्य पर्याय होते हुए भी सोना ये नाम उसमें एप्लीकेबल है। हमने इसके लिए वो बाल विवाह वगैरह अवस्था की बात की थी, यहाँ तो पूर्वापर कालभावी वगैरह विभिन्नता रहती हुई उसमें एक ही सुवर्ण समान रूप से पाया जाता है, इसलिए इस प्रकार की समानता को तद्भव सामान्य कहते हैं। उसी को मनुष्य पर भी घटाया था। तथा किसी भी एक विवक्षित काल में, अभी ये तो हमने अलग अलग कालों में उसकी पर्याय अलग अलग देखी थी, अभी एक ही काल में विद्यमान किंतु विभिन्न प्रकार के सुवर्णों से निर्मित कटक कुंडल केयूरादि पर्याय में यह भी सुवर्ण है, यह भी सुवर्ण है इत्यादि रूप से सदृशता बोधक जो समानता है उसे सादृश्य सामान्य कहते। क्या कहते? हमारे घर का जो सोना है वो 10 पीढ़ी से वही है, तो उसमें अनेक अवस्थाएं बदली फिर भी उसको कहेंगे सोना, और हमारे पास भी सोना है, उसकी कुछ चीजें बनाई है, आपके पास भी है, उनके पास भी है, वो सब उनको भी सबके सोना रूप से तो समान है, सबका नाम है सोना, इसको भी वो था तो तद्भव सामान्य और यह सादृश्य सामान्य। मनुष्यों में बाल युवा वृद्ध होते हुए वो मनुष्य है, वो है तद्भव सामान्य। और यहाँ अनेक प्रकार की गायें, रंग उनका अलग है, उसका जो आकार अलग अलग है, फिर भी सब में वो गौपना सदृश है, तो उसको कहेंगे सदृश सामान्य। यहाँ उन्होंने एक सुवर्ण का ही उदाहरण सबके लिए लागू किया। तो कहते सदृशता बोधक जो समानता है, सदृशता यानी सिमिलैरिटी बताने वाला, सदृशता बोधक उसे सादृश्य सामान्य। फिर से प्रश्न पूछना, आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, फिर पूछना। तद्भव सामान्य ने एक ही द्रव्य के अनेक पर्यायों में वो द्रव्य अन्वय रूप से, कंटिन्यूटी रूप से, नित्य रूप से पाया जाता है, वो है तद्भव सामान्य। जैसे हम जीव है, अभी मनुष्य है, देव में गए और कहीं, तो ये क्या है? सारा तद्भव सामान्य, जीव वही का वही है। या मनुष्य के लिए कहेंगे तो बाल है, युवा है, वृद्ध है, मनुष्य वही है, उसको कहेंगे तद्भव सामान्य। सादृश्य सामान्य ने हम सारे मानव है, ये सादृश्य सामान्य हो जाएगा।
कोई काला है, कोई गोरा है,
हाँ काला गोरा है, कोई अमेरिकन, कोई जापानीज है, कोई गोरा है। अभी उसके जो लेस आए कहो, हाइट बॉडी कहो, ये जो कोई विभिन्न विभिन्न है, तो ये इतनी विभिन्नता होने पर भी सदृशता क्या है? मानवता की अपेक्षा सदृशता, इसको कहेंगे सदृशता सामान्य, सादृश्य सामान्य। इसी प्रकार से नाम निक्षेप रूप शब्द भी, ये शब्दों के द्वारा उसको समझा रहे हैं, पूर्वापर कालभावी क्षेत्र क्षेत्र इत्यादि शब्दों में समान प्रतीति का उत्पादक होने से तद्भव सामान्य का निमित्त है। यानी वो क्षेत्र, ये तो तद्भव सामान्य भी है क्योंकि वही क्षेत्र है, उसमें जो काल परावर्तन होने पर उसको क्षेत्र ही कहेंगे, अन्य कुछ नहीं कहेंगे, या अन्य अन्य क्षेत्रों को भी क्षेत्र कहेंगे। एक तो क्षेत्र ये तद्भव सामान्य को भी बताने वाला है, तथा विवक्षित किसी भी एक काल में विभिन्न देशवर्ती मथुरा काशी इत्यादि क्षेत्रों में यह भी क्षेत्र है इत्यादि रूप से उच्चारण किए जाने वाला शब्द सदृश प्रत्यय का उत्पादक होने से सादृश्य सामान्य का भी निमित्त होता है। और सामान्य को विषय करना ही द्रव्यातिक नहीं का विषय। द्रव्यातिक क्यों का इस पर ये चर्चा करनी है? एक तो क्षेत्र 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 ही कह रहे हमेशा उसको। ये पहले के जमाने में वो आदिनाथ भगवान ने भी इसको भरत क्षेत्र कहा और हम भी भरत क्षेत्र कह रहे हैं। महावीर भगवान ने भी उसका नाम भरत क्षेत्र कहा। तो क्षेत्र तद्भव सामान्य वो क्षेत्र ही रहा। या एक ही काल में ये भारत है ये अमेरिका ये जापान है ये भी क्षेत्र है वो भी क्षेत्र है वो भी क्षेत्र है तो ये समानता हुई। क्षेत्र ने एरिया उसकी जो कुछ है वो तो उसको भी क्षेत्र कहेंगे तो ये समानता हो गई। तो इसके लिए ये द्रव्यार्थिक नहीं का विषय बस इतना है। वो द्रव्यार्थिक क्यों है इसकी चर्चा चल रही है। तीसरा पॉइंट तीसरा हेतु नाम निक्षेप को द्रव्यार्थिक नय का विषय बताने के लिए तीसरी युक्ति यह दी है कि वाच्य वाचक रूप दो शक्तियों वाला एक शब्द पर्यायार्थिक नय में असंभव है अर्थात पर्यायार्थिक नय का विषय नहीं हो सकता। इसका अभिप्राय यह है कि शब्द में वाच्य वाचक रूप दो शक्तियां द्रव्यार्थिक नय से ही घटित होती है। मैंने शब्द अपने वाच्य रूप अर्थ का प्रतिपादक होता है इसलिए तो उसमें इस नए से वाचक शक्ति बन जाती है। यानी हमने अभी पेंसिल कहा तो वो तो पेंसिल पदार्थों को बताने वाला है और स्वयं भी अपने स्वरूप का विषय होता है इसलिए वाच्य शक्ति भी उसमें सर्वदा पाई जाती है। शब्द जो है ना वो पदार्थ को भी बता रहे हैं वो शब्द इटसेल्फ अपने को भी बताता है। नहीं समझे? ये दीपक औरों को भी प्रकाशित करता है और उसको भी प्रकाशित करता है। तभी हमने पेंसिल शब्द कहा तो वो शब्द ने अपने को भी बताया कि नहीं बताया और ये वस्तु को भी बताया। ये कहना चाहते शब्द में ऐसी शक्ति जो पाई जाती है वाच्य और वाचक दोनों को बताने के लिए वो द्रव्यार्थिक नय में हो सकती है। उसको द्रव्यार्थिक नय कहा। फिर से देखो इसका अर्थ देखो। इसका अभिप्राय है कि ये नीचे से जो हमने वो पैराग्राफ की आठवीं लाइन पढ़ रही हूँ शब्द में वाच्य वाचक रूप दो शक्तियां द्रव्यार्थिक नय से ही घटित होती है। नहीं समझ? आप जैसे स्वपर प्रकाशक हो ना। ज्ञान क्या है? स्वपर प्रकाशक है। अपने को भी जानता है पर को भी प्रकाशित करता है पर को भी जानता है। ऐसे शब्द है वो स्वपर वाचक होता है। आपने शब्द का उच्चारण किया वो तो शब्द तो हमें सुना ही दिया और ये शब्द को द्वारा जो पदार्थ आपने बताया वो भी पदार्थ हमारे ज्ञान में आया। ख्याल में? स्वपर वाचक यहां लिखा शब्द अपने वाच्य रूप अर्थ का प्रतिपादक होता है इसलिए तो उसमें इस नए से वाचक शक्ति बनती है और स्वयं भी अपने स्वरूप का विषय होता है इसलिए वाच्य शक्ति भी उसमें सर्वदा पाई जाती है। यानी वो स्व पर वाचक होता है। वाच्य वो तो वो स्वयं स्वयं को भी वाच्य करता है ना। शब्द अपने को भी बताता है और अन्य चीज को भी जिसके बारे में हमने नाम रखा है उसको भी बताता है। ये शब्दों में स्वपर वाचक शक्ति है। इस प्रकार इस नए से किसी भी विवक्षित समय में वह उक्त दोनों अर्थात वाच्य वाचक रूप शक्तियों से युक्त रहेगा और इसी कारण से वह पर्यायार्थिक नय का विषय नहीं हो सकता। पर्यायार्थिक नय उसके द्वारा नहीं हो सकता है क्योंकि यद्यपि आगम में शब्द को पुद्गल द्रव्य की पर्याय कहा है तथापि जब वही शब्द वाच्य वाचक रूप दो शक्तियों वाला विवक्षित किया जाता है तब वह इस अपेक्षा से द्रव्यार्थिक नय का विषय ही घटित होता है। वो अपेक्षा से वो उसको द्रव्यार्थिक नय का विषय है। देखो पर्यायार्थिक जो हमने शब्द जो है वो पर्याय पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। शब्द जो है वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है परंतु हम किस शब्द के जो शब्द किसी को बताने वाला है कोई शब्द है तो किसी चीज को बताता है ना, जैसे हमने अभी हमने पुस्तक कहा, ये पुस्तक नाम की इस चीज को हमने पुस्तक नाम रखा है तो इसको भी बताता है। ये द्रव्यार्थिकने का विषय। आगे बढ़ते हैं।
किसी नई सम्यक दृष्टि को होते हैं, जैसे निक्षेप भी सम्यक दृष्टि कर सकते हैं।
देखो नए और निक्षेपों वाला, निक्षेपों से द्रव्य का सुनिश्चय हो जाता है। प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा वस्तु यथार्थ रूप से जानना, वही सम्यक्त्व का कारण है। तत्वा श्रद्धानंद सम्यक दर्शन में आता है। वो सही तो उसी के हो गए, सही निक्षेप हो जाए, सही नए हो जाए और उसको पदार्थ को सही निर्णय के जाना उसने और आत्मा का अनुभव किया तो हमने कहेंगे उसके प्रमाण नए निक्षेप उसके सब सही हो गए। परंतु यहाँ ये निक्षेप क्या है, नए क्या है, हम आप सब जानते हैं ना। निक्षेप तो वस्तु में होते हैं, ये लोक व्यवहार के लिए होते हैं। सही है नहीं क्या, लोक व्यवहार के लिए होते हैं। लोक व्यवहार तो सब में होगा, उसको सही रूप से जानना जो है। निक्षेप तो हमने कर दिए उसमें, वो निक्षेपों का सही अर्थ लगाना वो नयों के द्वारा होगा।
आपका ये कहना है कि क्या सम्यक दृष्टि के ही निक्षेप सही होंगे क्या?
नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं आता है। हाँ। वो लोक व्यवहार के लिए निक्षेप रखे जाते हैं।
तो जो वो जो हम लोग जो निक्षेप करते हैं वो सही ज्ञान करवाता है।
सही है ना, वो तो लोक व्यवहार के लिए करते हैं। सही ज्ञान उसमें से निकालना वो तो ज्ञान की पर्याय है। निक्षेप पदार्थ में किए जाते हैं लोक व्यवहार के लिए।
नहीं नहीं, मिथ्या दृष्टि के भी निक्षेप होते हैं।
हाँ, हो गए, परंतु
लेकिन
तो
उसका ज्ञान सम्यक दृष्टि को सही होगा, मिथ्या दृष्टि का सही नहीं।
जो हम लोग जो स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके जो पढ़ाई करते हैं वहाँ पे जो निक्षेप का निक्षेप करके हम वस्तु को जानते हैं,
वस्तु को जानते हैं ना, वो व्यवहार होता है। निक्षेपों के द्वारा व्यवहार होता है। हम किसी चीज का नाम रखते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको जो कुछ है ये सारे। तो जैसे शतरंज खेलते हैं आप, तो उसमें आपने वो निक्षेप कर दिया ना, वो इसको निक्षेप कहते नहीं मालूम नहीं है, इसको निक्षेप कहना ये चीज मालूम नहीं है। परंतु निक्षेप तो चलता है ना, लोक व्यवहार तो निक्षेपों से चलता है। आप कहेंगे हम ये स्कूल में जानते हैं ABCD पढ़े, वो क्या हमारा ज्ञान सही नहीं क्या? ज्ञान तो है, उसको हम वो नयों का नाम नहीं देंगे। जान रहे कि नहीं जान रहे, जो शब्द सुनते उसका ज्ञान हो रहा है कि नहीं, बोध तो हो रहा है। इसको सम्यक ज्ञान कहना कि नहीं कहना वो बात अलग। यानी सम्यक दृष्टि के निक्षेप अलग है और वो मिथ्या दृष्टि के अलग, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर देखो नीचे का पैराग्राफ 4 नंबर के पृष्ठ पर, बुद्धि के द्वारा इच्छित क्षेत्र के साथ एकत्व को प्राप्त हुए, अर्थात जिनमें बुद्धि के द्वारा ये स्थापना की बात चलेगी। बुद्धि ने हम अपने ज्ञान में उसको करेंगे, बुद्धि के द्वारा इच्छित क्षेत्र की स्थापना की गई है, ऐसे सद्भाव और असद्भाव स्वरूप जिसको हम तदाकार तदाकार कहते हैं, सद्भाव असद्भाव स्वरूप काष्ठ दंत और शिला आदि स्थापना क्षेत्र निक्षेप है। यह स्थापना निक्षेप यानी वो किसमें बना सकता है? काष्ठ यानी लकड़ी में भी बनाते हैं, दंत यानी वो हस्ती दंत में बनते हैं, शिलाएं यानी वो पत्थर में बनते हैं। स्थापना क्षेत्र निक्षेप, जैसे आपने अभी कहा ना किसी के, वो तो आकार मॉडल बना लेते हैं, वो क्या है? स्थापना क्षेत्र निक्षेप हुआ। या हम चार्ट बनाते हैं इंडिया का, तो हम ये हमारा महाराष्ट्र है, ये क्या किया हमने? स्थापना कर दी, क्षेत्र की स्थापना कर दी। यह स्थापना निक्षेप तदाकार और अतादाकार स्वरूप से सर्व द्रव्यों में व्याप्त होने के कारण अथवा प्रधान और अप्रधान द्रव्यों की एकता का कारण होने से द्रव्यार्थिक नय के अंतर्गत है, ऐसा समझना है। ये 3 निक्षेप द्रव्यार्थिक क्यों है वो बता रहे, वो क्या है वो तो बता चुके, क्योंकि हमने वो निक्षेप बहुत बार देखे थे। किसी अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु की स्थापना कर देना, कि हमने तो कह दिया कि ये हमारा ये टेबल है, देखो ये तुम्हारी एरिया है, इसको हम साइन कहेंगे, इसको चेंबर कहेंगे, इसको ये हमने स्क्वायर कर दिया और इसको हमने नाम दिए, मैं आपके तो स्क्वायर रूप एरिया नहीं, आपकी अलग अलग है। या महाराष्ट्र, हमने पूरा महाराष्ट्र, हमने ये गोल किया ये महाराष्ट्र है, ये गोल किया ये गुजरात है, ये गोल किया ये कर्नाटक है, वो ऐसा गोल तो नहीं है, ये अतदाकार में हम कह सकते हैं उसको। परंतु इसको द्रव्यार्थिक क्यों कहना, इसकी चर्चा करें। द्रव्यार्थिक नय का विषय क्यों कहेंगे कि तेरे प्रधान, एक तो तदाकार और अतदाकार स्वरूप से सर्व द्रव्यों में व्याप्त होने के कारण, यानी द्रव्य आते हैं उसके अंदर इसलिए, और प्रधान और अप्रधान द्रव्यों की एकता का कारण होने से द्रव्यार्थिक नय के अंतर्गत है, भी इसी को समझा रहे विशेषार्थ में 5 नंबर पृष्ठ पर। स्थापना निक्षेप को द्रव्यार्थिक नय का विषय सिद्ध करने के लिए 2 हेतु दिए गए हैं, जिनका अभिप्राय क्रमशः इस प्रकार है। 1 नंबर, जो तदाकार अतदाकार लिखा था वो 1 नंबर है। स्थापना निक्षेप सद्भाव और असद्भाव रूप से सर्व द्रव्यों में व्याप्त है, इसका अर्थ यह है कि त्रिकालवर्ती सभी द्रव्य यद्यपि स्वतंत्र, क्या कहा,
त्रिकालवर्ती बने आप, विलोकवर्ती,
सॉरी फिर से पढ़ती हूँ। स्थापना निक्षेप सद्भाव और असद्भाव रूप से सर्व द्रव्य, इसका अर्थ यह है कि त्रिलोकवर्ती या 3 लोक यानी पूरे लोक में त्रिलोकवर्ती सभी द्रव्य यद्यपि स्वतंत्र एवं निश्चित आकार वाले हैं, तथापि व्यवहार के योग्य एवं विशिष्ट अपेक्षा से विशिष्ट आकार से परिकल्पित द्रव्य को, यानी वो अपना अपना निश्चित आकार सभी द्रव्यों को है, फिर भी हमने निश्चित उसका विशिष्ट आकार उसकी इमेजिन किया, उसको मान लिया है, परिकल्पित द्रव्य को साकार सद्भाव रूप या तदाकार कहा जाता है। इसको तदाकार उसी आकार का, वो आकार हमने निश्चित मान लिया है, और उससे भिन्न आकार वाली वस्तु को असद्भाव या अतदाकार कहा जाता है। ये मूर्ति के बारे में, प्रतिमा के बारे में, ये तो जो मनुष्याकृति जो प्रतिमाएं बनाते हैं उनमें ये तदाकार है, और पूजा में वो है ना लौंग रखते हैं और फिर हमने स्थापना की कहते हैं, वो क्या होगा, अतदाकार होगा। काष्ठ या दांत वगैरह यद्यपि अपने स्वतंत्र आकार वाले हैं, तथापि उन्हीं को हाथी घोड़ा आदि किसी एक विवक्षित या निश्चित आकार से घटित कर दिए जाने पर उन्हें तदाकार कहा जाता है। यानी लकड़ी का अपना आकार अलग है, पर लकड़ी में हमने वो हाथी बनाया, बैल बनाया, और वो शतरंज में तो निश्चित आकार नहीं है उसका, हाँ वो तदाकार, हाँ, और निश्चित आकार से घटित नहीं होने पर भी किसी एक वस्तु में जो संकेत द्वारा किसी अन्य वस्तु की परिकल्पना की जाती है उसे अतदाकार कहते हैं। वो शतरंज में वो जो क्या, ये प्यादे है, ये राजा है, ये वजीर है, ये क्या होता है, अतदाकार। इस प्रकार यह स्थापना का व्यवहार, ये व्यवहार के लिए होते हैं, निक्षेप सारे व्यवहार के लिए होते हैं। स्थापना का व्यवहार तदाकार और अतदाकार रूप से सर्व द्रव्य में पाया जाता है, अर्थात सभी द्रव्यों में दोनों प्रकार का स्थापना निक्षेप किया जा सकता है, जो कि क्षेत्र भेद या काल भेद होने पर भी बन जाता है। अन्य अन्य क्षेत्र में, अन्य अन्य कालों में भी ये स्थापना का भेद हो सकता है। इस कारण से स्थापना निक्षेप को द्रव्यार्थिक नय का विषय कहा। देखो क्या कहना चाहते हैं, किसी द्रव्य में अन्य द्रव्य की स्थापना करनी है, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय, बस इतना ही सिंपल उसको ले लो। वो हो सकता है उसी आकार का हो या अन्य आकार का। अब दूसरी बात, वो प्रधान अप्रधान की बात की। प्रधान और अप्रधान द्रव्यों की एकता का कारण कहने का अभिप्राय यह है कि जिस वस्तु की स्थापना की जाती है वह प्रधान द्रव्य, और जिस वस्तु में स्थापना की जाती है वह अप्रधान द्रव्य कहलाता है। इससे पहले के जमाने में वो तो एक सुपारी रख दी तो कहते ये पत्नी है, पूजा में बैठे है, या बाबा राजा चला गया कोई लड़ाई में तो उसकी तलवार रख दी तो कहते ये पति है, तो मुख्यता किसकी, वो पति की मुख्यता, वो तलवार की तो मुख्यता नहीं है। तो जिसकी स्थापना की जाती है वो प्रधान, प्रधान यानी मुख्य, मुख्य, और जिसमें स्थापना की जाती है वो तो अप्रधान, उसकी कोई चीज नहीं, वो कोई भी अन्य चीज है उसमें हमने स्थापना कर दी, वो अप्रधान द्रव्य कहलाता है। यह सिंह है, इस प्रकार से स्थापना निषेक, असली सिंह रूप प्रधान द्रव्य और मिट्टी आदि के खिलौनों में स्थापित सिंह रूप आकार वाले अप्रधान द्रव्य में एकता का कारण अर्थात एकत्व प्रतीति का निमित्त होता है। यानी वो खिलौने में ये सिंह है, ये वाघ है, ऐसा हम कहते हैं तो उसका एकत्व स्थापित किया जाता है। उसे मिट्टी अलग चीज है और वो असली सिंह अलग है, तो उसमें हमने चित्र में कहो या मिट्टी के खिलौने में कहो या कोई काष्ट में कहो अन्य चीज में, ये वो है ऐसी प्रतीति कर लेते हैं। वो तो अप्रधान हुआ और वो मुख्य है जिसकी हमें उसमें स्थापना करनी है। ये भी द्रव्य का किसी अन्य द्रव्य में स्थापित कर दिया, इसलिए स्थापना निषेध द्रव्यार्थिक नहीं का विषय। एक्चुअल सिंह प्रधान, हाँ, मिट्टी में अभी हमने कर दिया तो अप्रधान हुआ। हमारे महावीर भगवान वो तो प्रधान द्रव्य और हमने वो मूर्ति में उनको स्थापित कर दिया, वो अप्रधान हुआ। वो एक्चुअल तो अलग है और फिर भी उसमें हमने वो प्रधानवत उसके साथ व्यवहार करते हैं। अभी हुआ नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप, यानी नाम क्षेत्र और स्थापना क्षेत्र। अब क्षेत्र ये शब्द पर सब लगाने ना, जैसे हम आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप कहते थे, द्रव्य निक्षेप के दो भेद किए थे, तो इसे यहाँ क्षेत्र में लगाना, तो कहेंगे आगम द्रव्य क्षेत्र और नो आगम द्रव्य क्षेत्र, ऐसा कहेंगे। ये द्रव्य निक्षेप हुए, उसका एक नाम कहने तो द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं, क्षेत्र शब्द पर द्रव्य निक्षेप लगाना है तो उसको कहेंगे द्रव्य क्षेत्र निक्षेप। तो द्रव्य क्षेत्र के दो भाग, आगम द्रव्य क्षेत्र और नो आगम द्रव्य क्षेत्र। देखो आगम द्रव्य क्षेत्र और नो आगम द्रव्य क्षेत्र के भेद से द्रव्य क्षेत्र दो प्रकार का है। द्रव्य क्षेत्र ने द्रव्य क्षेत्र निक्षेप, क्षेत्र में द्रव्य निक्षेप किया हमने, उनमें से अभी हमारी जो आगम किसको कहना, क्षेत्र विषयक शास्त्र का ज्ञाता, परंतु उसमें उपयोग से रही उसको हम आगम कहेंगे। तो क्षेत्र विषय शास्त्र का ज्ञाता किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव, जीव को कहा आगम द्रव्य क्षेत्र निक्षेप। ख्याल में आती है ना, जैसे हमने अभी त्रिलोक सार में क्षेत्र संबंधी सब पढ़ लिया, हमने उसका ज्ञान किया और अभी हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उस जीव को क्षेत्र कहेंगे, ऐसा आगम क्षेत्र कहेंगे, आगम द्रव्य क्षेत्र। किसको कहा, जीव को, जीव को क्षेत्र नाम दिया। शंका, श्रुत ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से विशिष्ट तथा द्रव्य और भाव रूप क्षेत्रागम से रहित इस जीव द्रव्य के आगम द्रव्य क्षेत्र रूप संज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है। यानी ये तो जान रहा है, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम है इसके पास, यानी उसका विशिष्ट जानना चल रहा है ना। ये द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य रूप से वो क्षेत्र, वो स्वयं जीव क्षेत्र नहीं है और नहीं उसका जानना वो क्षेत्र। द्रव्य और भाव रूप क्षेत्रागम से रहित, द्रव्य आगम से, आगम का द्रव्य क्षेत्रागम, यानी क्षेत्र जय हमारा त्रिलोक सार का पुस्तक, ये द्रव्य क्षेत्रागम है और भाव क्षेत्रागम है ने उस संबंधी ज्ञान, अभी उसका उपयोग उसमें नहीं है, ऐसे जीव को क्यों कह रहे हैं, आगम द्रव्य क्षेत्र क्यों कह रहे हैं, जीव को ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आधार रूप आत्मा में आधेयभूत क्षोभम स्वरूप आगम के उपचार से, यानी क्या कहना चाहते हैं, क्षोभम रूप यानी वहाँ ज्ञान है परंतु उपयोग रूप ज्ञान नहीं, उस संबंधी क्षोभम तो वर्त रहा है, वापस ख्याल में आती है ना बात, हम किसी चीज को जान लिया हमने परंतु अभी हमारा उपयोग उसमें नहीं है, यानी आपको अभी सारा किचन का नॉलेज है, आपको जो व्यापार धंधे का नॉलेज है, आपको सब ड्राइविंग आती है, उस संबंधी ज्ञान का क्षोभम वर्त रहा है परंतु अभी उपयोग हम इसको जानने में है, विधवला पुस्तक चार पढ़ रहे हैं तो उसका क्षोभम है ना, ये कहना चाहते हैं, जिन्होंने क्षेत्र संबंधी आगम का ज्ञान कर लिया है उसको उस संबंधी क्षोभम चल रहा है, उसका उपयोग नहीं है, शंकाकार की प्रश्न यानी उसकी शंका यही थी, ये द्रव्य आगम को तो आगम क्षेत्र कहो, जो क्षेत्र संबंधी आगम है उसको आगम क्षेत्र कहो तो ठीक है, और जो भाव संबंधी ने आगम को वो जान रहा है उसको आगम कहो क्षेत्र तो चलेगा, परंतु यहाँ तो केवल उसका क्षोभन चल रहा है, उपयोग है नहीं, फिर भी उस जीव को क्यों कह रहे, ये उसका प्रश्न है, इस प्रश्न का समाधान चल रहा है, यह दोष नहीं, क्योंकि आधार रूप आत्मा में, आत्मा उसका आधार है कि जहाँ वो क्षोभम चल रहा है, आधेयभूत आधेय ने जीव, देखो ये टेबल आधार है और ये हमारी उसके ऊपर स्टैंड रखा है, इसके आधार से ये वस्तु है तो वस्तु है आधेय हुई और ये उसका आधार हुआ, तो आत्मा आधार है और उसके आधेयभूत क्या है, क्षोभम स्वरूप आगम, आत्मा के आधार से एक क्षोभम हो रहा है, आत्मा की वो ज्ञान की परिभाषा, उसके उपचार से अथवा कारण रूप आत्मा में कार्य रूप क्षोभम के उपचार से, अथवा प्राप्त हुई है आगम संज्ञा जिसको ऐसे क्षोभम से युक्त जीव द्रव्य के अवलंबन से जीव के आगम द्रव्य क्षेत्र रूप संज्ञा के होने में कोई विरोध नहीं है, यानी जिसने आगम जान रहा लिया है, क्षेत्र संबंधी आगम जान लिया है, उस जीव को भी हम आगम क्षेत्र कहेंगे, हमने ये तो निक्षेप बहुत बार अलग-अलग विषयों पर लगाए हैं। अब ये जो द्रव्य निक्षेप के मूल दो भेद देखे थे, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप, हम वो क्षेत्र शब्द निकाल देते हैं, मूल में हम द्रव्य निक्षेप के दो भेद आगम और नो आगम, उस विषय संबंधी जानने वाला जीव को आगम कहा, यहाँ क्षेत्र संबंधी आगम को जानने वाले जीव को आगम द्रव्य क्षेत्र कहेंगे, और नो आगम में क्या लेना, जो जान नहीं रहा उसमें क्या क्या होता है, एक तो जानने वाले जीव का शरीर, उसी जीव को जो भविष्य में जानेगा अभी नहीं जानेगा उसको भावी कहेंगे, और इनको छोड़कर अन्य जो चीज है तद्व्यतिरिक्त, अब उसकी तीन बातें यहाँ बताएंगे, ज्ञायक शरीर, ज्ञायक शरीर शरीर ज्ञायक नहीं है, ज्ञायक का शरीर, वो शरीर में फिर हम भूतकाल का शरीर यानी पहले भव का फिर अभी का भविष्य का, ऐसे तीन बातें उसमें भी लगाएंगे, तो ज्ञायक शरीर, भव्य, भव्य ने एक्चुअली भावी यानी वो जीव जो आगामी काल में जानेगा, भविष्य में जानने वाला जीव, उसको भव्य या भावी कहते हैं, और तद व्यतिरिक्त यानी ना शरीर है ना जीव है, इनको छोड़कर अन्य चीजें, तद व्यतिरिक्त के भेद से नो आगम द्रव्य क्षेत्र तीन प्रकार का है, यानी नो आगम द्रव्य निक्षेप, हम क्षेत्र पर निकाले इसलिए क्षेत्र शब्द डाल दिया, तीन प्रकार का है, उनमें से ज्ञायक शरीर तीन प्रकार का है, भावी ज्ञायक शरीर यानी जानने वाले जीव के भविष्य का शरीर, वर्तमान ज्ञायक शरीर यानी जानने वाले जीव का वर्तमान का शरीर, और अतीत ज्ञायक शरीर यानी जीव तो वर्तमान में जान रहा है परंतु उसके पूर्व भोग का शरीर, इनमें से अतीत ज्ञायक शरीर भी, यानी जो पूर्व भोग में उसने जो शरीर छोड़ा था वो च्युत चावित और त्यक्त के भेद से तीन प्रकार का है। च्युत ने स्वयं मर गया, चावित ने छोड़ा गया, और त्यक्त ने स्वयं उसने त्याग किया। जितने अपने वो तो रेगुलर मरने से मर गया, चावित ने कदली घास से मर गया, त्यक्त ने उसने स्वयं उस पर छोड़ दिया, यानी संलेखना आदि से मर गया वो तो त्यक्त कहते हैं। शंका, द्रव्य क्षेत्रागम के निमित्त से, यानी द्रव्य क्षेत्रागम में आगम को जानने वाला जीव पूर्व के शरीर को क्षेत्र संज्ञा भले ही रही आवे, किंतु अन आगम शरीर के क्षेत्र संज्ञा घटित नहीं होती है, यानी वो तो भविष्य के शरीर को कैसे कहेंगे क्षेत्र। देखो, क्षेत्रागम के निमित्त से, यानी जीव जानने वाला है उसके निमित्त से पूर्व शरीर को भी उन्होंने क्षेत्र संज्ञा दी, यानी आगम से उस शरीर को भी क्षेत्र कह दिया। आगम द्रव्य मजे नो आगम द्रव्य ने उसमें नो आगम में हाँ जीव जीव को लेना है, जानने वाले जीव का शरीर, जानने वाले जीव का शरीर। हाँ, वो अभी वो जीव नहीं जान रहा है परंतु तो उस जीव भविष्य में जानेगा, उस जीव को। हाँ, यहाँ शरीर को कहा, शरीर में तीन भेद, भूतकाल का शरीर, वर्तमान का शरीर और भविष्य का शरीर। प्रश्न यही है, कि जो शरीर जो उसने अभी प्राप्त भी नहीं किया है उसको क्यों कहेंगे, उसका उत्तर कह रहे समाधान। उक्त शंका का यहाँ परिहार करते हैं, वह इस प्रकार है, जिसमें द्रव्य रूप आगम अथवा भाव रूप आगम वर्तमान काल में निवास करता है, भूत काल में निवास करता था और आगामी काल में निवास करेगा। जीव का शरीर, जानने वाला तो जीव है परंतु तो उसका शरीर तो कुछ नहीं जान रहा है, शरीर को भी उपचार किया। वही जीव की, अभी वो देव में गया तो जीव तो वही का वही है।
वर्तमान काल में निवास करता है, वो तो आगम द्रव्य हो गया ना,
नो आगम हुआ, जीव को आगम कहा, उसके शरीर को क्या कहेंगे, शरीर को भी उपचार से कहे ना। हम कहीं ना किसी को हमने कहा कि जो किसी ने कोई विद्या हासिल कर दी, वो तो जीव को कहना है, हम तो लौकिक में सारा शरीर को ही उपचार करते हैं। देखो इसका समाधान पढ़ते, जिसमें द्रव्य रूप आगम अथवा भाव रूप आगम वर्तमान काल में निवास करता है, भूत काल में निवास करता था और आगामी काल में निवास करेगा, इस अपेक्षा तीनों ही प्रकार का शरीर क्षेत्र कहलाता है, नो आगम द्रव्य क्षेत्र कहलाता है, अथवा आधार रूप शरीर में आधेय रूप क्षेत्रागम का उपचार करने से भी क्षेत्र संज्ञा बन जाती है। शरीर के आधार से है यहाँ पर, इसलिए उसको भी कहेंगे। नो आगम द्रव्य क्षेत्र के तीन भेदों में से जो आगामी काल में क्षेत्र विषयक शास्त्र को जानेगा, ऐसे जीव को, जीव को लिया, शरीर को नहीं, शरीर की बात हो गई, जीव को क्यों कहा, वो अभी नहीं जान रहा है इसलिए उसको नो आगम कहा, जानने वाले को आगम कहा था। नहीं जानने वाले में दो होते हैं, जीव का शरीर भी आया और स्वयं जीव भी, और जिसने अभी तक नहीं जाना है भविष्य में जानने वाला है, ऐसे जीव को नुआगम कह दिया, वो भावी नुआगम द्रव्य क्षेत्र कहते हैं, भावी है वो, उस जीव को भविष्य काल में वो जानने वाला होने वाला है उसको अभी कहेंगे। शंका, जो जीव क्षेत्रागम रूप क्षोभशम से रहित होने के कारण, यानी उसका क्षेत्र संबंधी आगम का ज्ञान नहीं, उस संबंधी क्षोभशम नहीं है, तो उसके कारण वो अनागम है, जिसको हम नो आगम कहते ना, अनागम है। उस जीव के क्षेत्र संज्ञा कैसे बन सकती है? समाधान, नहीं, क्योंकि भाव क्षेत्र रूप आगम जिसमें निवास करेगा, इस प्रकार की निरुक्ति के बल से जीव द्रव्य के क्षेत्रागम रूप सूक्ष्म होने के पूर्व ही क्षेत्रपना सिद्ध है। मेडिकल में एडमिशन ली तो डॉक्टर कहने लगते हैं ना, ये तो अभी इसमें डॉक्टर होने वाला है। भाव क्षेत्र रूप आगम यानी आगम संबंधी ज्ञान जिसमें निवास करेगा, यानी अभी जिसने आगम पढ़ना शुरू नहीं किया, यानी उस क्षेत्र का आगम नहीं पढ़ा है, परंतु वो पढ़ने वाला है, उस जीव को नुआगम संज्ञा दी। केवली तो जानते नहीं पढ़ने वाला है, अवधि ज्ञानी भी जानते हैं पढ़ने वाला है, उस जीव को भी कहेंगे वो। ये हमने ज्ञायक शरीर भी देखा, भावी भी देखा। ज्ञायक शरीर में शरीर को लिया, भावी में जीव को लिया। अब तीसरा भेद तद व्यतिरिक्त था, नीचे का पैराग्राफ। ज्ञायक शरीर और भावी से भिन्न जो तद व्यतिरिक्त नुआगम द्रव्य क्षेत्र है, वह यानी जो तद व्यतिरिक्त है, जो शरीर भी नहीं जो जीव नहीं, वो क्या हो सकता है? एक तो कर्म हो सकता है, या कर्म को छोड़कर अन्य कुछ भी चीज हो सकती है, ख्याल में? तो कहते वह कर्म द्रव्य क्षेत्र और नो कर्म द्रव्य क्षेत्र के भेद से दो प्रकार का है। उनमें से ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के कर्म द्रव्य को कर्म द्रव्य क्षेत्र कहते हैं। तो कर्मों को क्यों कहा? क्योंकि उस जीव के सत्ता में है, इसलिए उस कर्म को भी कह दिया। जिस शरीर को कह दिया तो उसके कर्म को भी कह दिया। अब शंका, ये बीच में लाइन नहीं आई है ना, प्राकृत और हिंदी में देखो, कर्म द्रव्य को क्षेत्र संज्ञा संस्था ने संज्ञा
चाहिए,
कैसे प्राप्त होती है? समझ नहीं, क्योंकि जिसमें जीव क्षयंती अर्थात निवास करते हैं, इस प्रकार की निरुक्ति के बल से कर्मों के क्षेत्रपना सिद्ध है। जीव उसमें रहता है इसलिए। तो एक हो गया तद व्यतिरिक्त का एक भेद हुआ। तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य का दूसरा भेद है नो कर्म द्रव्य क्षेत्र। वह औपचारिक और पारमार्थिक के भेद से दो प्रकार का है। औपचारिक यानी अन्य किसी भी क्षेत्र को बता दिया जो कुछ नहीं, जीव का कर्म नहीं है, शरीर नहीं, कुछ नहीं लगता वगैरह। उनमें से लोक में प्रसिद्ध शाली क्षेत्र, ब्रीही क्षेत्र यानी धान्य क्षेत्र इत्यादि औपचारिक नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य क्षेत्र कहलाता है, और आकाश द्रव्य पारमार्थिक नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य क्षेत्र कहाँ है? यानी जो हमने क्या कही है, जिसमें ये तो ज्वार का खेत है, ये गेहूं का खेत है, अन्य अन्य जो कुछ है, अन्य क्षेत्र लौकिक में जो है, और पारमार्थिक यानी वो तो सब क्षेत्र कौन से, आकाश का, जो आकाश ही सब सर्वव्यापक है उसको कहेंगे, और वो जानने वाला नहीं है, इसलिए कहा भी है तीन नंबर ऊपर पढ़ेंगे फिर चार नंबर। खेतम खलु आकाशम तव वदिरित्तम चहो दिनो खेतम जीवाय पोगलाविय धम्मा धम्मत्थिया कालो। अर्थ पढ़ते पहले, आकाश द्रव्य नियम से तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य क्षेत्र है। यानी जो कर्म भी नहीं, जीव का शरीर नहीं भी, जीव भी नहीं है, तो फिर भी क्षेत्र कहना है तो आकाश को लेना। और आकाश द्रव्य के अतिरिक्त यानी इसको छोड़कर जीव पुद्गल धर्मास्तिका अधर्मास्तिकाएं तथा काल द्रव्य नो क्षेत्र कहलाते हैं। जो तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य क्षेत्र है ना, उसको कहना। हाँ, जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल आकाश को छोड़कर अन्य, यानी आगम आकाश को क्षेत्र कहा, ये नो क्षेत्र हो गया। चार नंबर, आगासम सपदेशम तूर्धाधो तिरियो विय खेतलोगम वियाणा ही अनंत जिन देशिदम। आकाश सप्रदेशी है और वो ऊपर नीचे और तिरछे सर्वत्र व्याप्त है, उसे ही क्षेत्र लोग जानना चाहिए, उसे जिन भगवान ने अनंत कहा है। यह आगम और नो आगम के भेद रूप द्रव्य क्षेत्र निक्षेप भी द्रव्यार्थिक नय का विषय है, जो कि द्रव्य अर्थात सामान्य के बिना यह निक्षेप संभव नहीं है, क्योंकि कर्म है या अन्य कुछ चीज है, वो तो वो द्रव्य है, उसमें ये निक्षेप होता है, उपचार होता है। जो भाव क्षेत्र निक्षेप है, पहले हमने कौन सा देखा, नाम स्थापना द्रव्य, अब भाव की बात है, भाव निक्षेप। जो भाव क्षेत्र निक्षेप है वह आगम भाव क्षेत्र और नो आगम भाव क्षेत्र के भेद से दो प्रकार का है। क्षेत्र विषयक प्रावृत के ज्ञाता, यानी क्षेत्र विषयक जो आगम है उसका ज्ञाता, और वर्तमान काल में उसमें उपयुक्त जीव को आगम भाव क्षेत्र निक्षेप कहते, जीव को ही बता देते हैं क्षेत्र, क्योंकि वो ज्ञाता है और उसी में उसका उपयोग भी है। जो आगम से अर्थात क्षेत्र विषय ज्ञान के बिना अन्य पदार्थ में उपयुक्त हो, उस जीव को अथवा औदयक आदि पांच प्रकार के भावों को नो आगम भाव क्षेत्र निक्षेप कहते हैं। नो आगम यानी वो जीव उसमें उपयुक्त नहीं है, उस जीव को भी कहेंगे या उसके अन्य भावों को भी कहेंगे, जीव के अन्य भावों को। हाँ, यानी जो आगम का ज्ञाता नहीं है, अब कहते ऊपर बतलाए गए इन क्षेत्रों में से हमने इतने भेद देखे, नाम स्थापना द्रव्य भाव, यहाँ पर कौन से क्षेत्र से प्रयोजन है, ये पुस्तक में कौन सा क्षेत्र अभी बताएंगे, तो कहते यहाँ पर नो आगम द्रव्य क्षेत्र से प्रयोजन है। ये नो आगम द्रव्य क्षेत्र किसे कहते हैं, समाधान, आकाश गगन देव पथ गुह्य का चरित, यानी यक्षों के विचरण का स्थान, अवगाहन लक्षण, आधेय व्यापक आधार और भूमि, ये सब नो आगम द्रव्य क्षेत्र के एकार्थक नाम है।
ये आकाश और गगन में क्या फर्क है?
कुछ नहीं, वही एकार्थक शब्द है, आगे लिखा ना, एकार्थक नाम है, नो आगम द्रव्य क्षेत्र के एकार्थक नाम है, उसके लिए सब नाम आ सकते हैं। ये विशेषार्थ पढ़ लेते इतना, आकाश का ही अर्थ है, उसी को देवपद कहा, उसी को यक्षों के विचरण का क्षेत्र कहा, विशेषार्थ। अब धवलाकार, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान, ये तत्वार सूत्र आया ना, इन प्रसिद्ध छह अनुयोगों के अनुयोग द्वारों के द्वारों से क्रमशः क्षेत्र का विचार करते हैं। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को, किसी भी द्रव्य हो तत्व को उसके जानने के ये प्रकार है, इतने प्रकारों से उसका अच्छा निर्णय करना चाहिए। पहले हमने देखा था सत्संख्या वगैरह वगैरह, यहाँ तो निर्देश, फिर स्वामित्व, इसकी चर्चा कल करेंगे, साधन अधिकरण स्थिति और विधान, ये सूत्र भी है ना तत्वार सूत्र में, इन प्रसिद्ध छह अनियोग द्वारों से यानी इतने इतने अधिकारों इतने विषयों से क्रमशः क्षेत्र का विचार करते, क्षेत्र पर ये सब लगाएंगे। इनमें से पूर्व में जो निक्षेप या एकार्थ द्वारा क्षेत्र का विचार किया गया है वह सब निर्देश से अंतर्गत समझना चाहिए। निर्देश ने उसका नाम बताना, यही निर्देश होता है। बाकी स्वामित्व वगैरह की चर्चा हम कल करेंगे, अभी तक हमने जो पढ़ा उसका नाम है निर्देश। नाम बता दिया ना, एक क्षेत्र कह दिया हो गया निर्देश, अभी उसकी जो चर्चा है उसका स्वामी कौन है क्या क्या वो सब बताएंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।